पृष्ठ 49 मोहन राकेश की कहानी यात्रा। कहानी यात्रा एक परिचय। राकेश की कहानियों में निरंतर विकसित और परिवर्तित होते जा रहे भारतीय जीवन की झलक है। उनमें वह परिवेश अंकित हुआ है जो हमारे आसपास मंडराता रहता है। रचनात्मक जीवंतता और वैचारिक सक्रियता का जो सिलसिला नई कहानी से शुरू होता है, मोहन राकेश उसके एक हिस्से ही नहीं निगहबान भी हैं। कहानी चर्चा के कुछ अहम सवालों को उठाने में उन्होंने पहल की और अपनी कहानियों के माध्यम से उन्हें एक रचनात्मक दिशा दी है। एक, जहां तक राकेश की कथा यात्रा को स्पष्ट करने वाली उनकी कृतियों का प्रश्न है, तो वह 5 कहानी संग्रहों के रूप में सामने आई है। उनकी कहानियों के 5 संग्रह कालक्रमानुसार ये हैं: इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966। राकेश के ये संग्रह क्रमशः उनकी कहानी यात्रा के विभिन्न सोपानों को व्यक्त करते हैं। इन संग्रहों में आई कहानियों को राकेश ने पुनः 4 जिल्दों में बांधने का कार्य भी तत्परता के साथ किया था। इन 4 जिल्दों के नाम हैं: आज के साए, रोए रेशे, एक एक दुनिया और मिले जुले चेहरे। इन संग्रहों की कहानियां प्रायः वे ही हैं जो उपनिर्दिष्ट संग्रहों में आ चुकी हैं। आपवादिक रूप से कुछ एक कहानियां ही नहीं हैं। 5 संग्रहों की कहानियों को 4 में बांधने की कोशिश के पीछे राकेश का एक विशेष मंतव्य रहा है। राकेश ने अलग अलग स्थितियों और संदर्भों की कहानियों को अलग अलग संग्रहों में देकर एक प्रकार से अपनी कहानियों को विभाजित भी कर दिया है। कहानियों के प्रकाशन की गति इन्हीं संग्रहों तक नहीं रही है। राधा कृष्ण प्रकाशन से छपी 4 जिल्दों की कहानियों को पुनः राजपाल एंड सन्स में प्रकाशित कराया गया और अब की बार उनकी समस्त कहानी यात्रा को 3 खंडों में ही सीमित कर दिया गया। यह भी एक विचित्र संयोग है कि पहले उनकी 5 कहानी संग्रह 4 में परिवर्तित हुए और बाद में केवल 3 जिल्दें ही रह गईं। हर बार एक संख्या का कम होते जाना, नोट 1, डॉक्टर धनंजय वर्मा, सारिका, मार्च 73 में प्रकाशित लेख से, पृष्ठ 82। पृष्ठ 50 राकेश की किस मनोवृत्ति को स्पष्ट करता है कहना कठिन है। पहले के 5 संग्रहों को 4 में परिवर्तित करने तक की बात तो समझ आती है, किंतु उन 4 को पुनः 3 में परिवर्तित करने के पीछे उनकी व्यापारिक मनोवृत्ति आभासित होने लगती है। यूं उनके निकटवर्ती मित्रों की तो उनके संबंध में मान्यता भी यही रही है कि वे व्यापारिक मनोवृत्ति के थे, वह सौदा पटाने में लगे रहते थे। जब मैं भी उपेंद्रनाथ अश्क से मिली तो उन्होंने राकेश की कहानियों, कला और नई संवेदना की तो जी खोलकर प्रशंसा की, किंतु उनकी इस सौदेबाजी वृत्ति पर प्रहार भी किया। उन्होंने साफ कहा कि वह 54 तक का हिसाब रखते थे और जहां तक उनका सौदा पटता नहीं था वहां वे नहीं जाते थे। 1, खैर अब राकेश की कहानियों के 3 संग्रह हमारे सामने हैं: क्वार्टर, पहचान और वारिस। क्वार्टर में 15, पहचान में 19 और वारिस में 20 कहानियां दी गई हैं। इस प्रकार 54 कहानियां हैं जो इन संग्रहों में समाहित हैं। यूं राकेश ने इन 3 संग्रहों की भूमिका में यही लिखा है कि 4 जिल्दों के अलग अलग समय पर प्रकाशित होने के कारण बाद की जिल्दें आने तक पहले की जिल्दों के संस्करण लगभग समाप्त हो गए, जिससे उन्हें एक सेट के रूप में प्रस्तुत करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि पहले के प्रकाशित अलग अलग संग्रह भी अब उपलब्ध नहीं थे। इसलिए बहुत से पाठकों के पत्र आने लगे कि अमुक अमुक कहानियों की तलाश उन्हें कहाँ से करनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि पूरी कहानियों को एक साथ 3 जिल्दों में प्रकाशित करने की वर्तमान योजना से इस जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा। 2, स्पष्ट है कि राकेश अपनी कहानियों को एक सेट के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। उनकी यह कामना तो स्तुत्य है, किंतु 4 जिल्दों की जो साभिप्रायता और अर्थवत्ता थी, वह इन 3 से पूरी नहीं हुई। सारिका के मोहन राकेश स्मृति विशेषांक में 9 का अन्य कहानियां भी कमलेश्वर के सहयोग से प्रकाशित हुई हैं। इनके नाम हैं बनिया बनाम इश्क, भिक्षु, लड़ाई, कटी हुई पतंगे, गुमशुदा, लेकिन इस तरह, पंप, अर्धविराम और नन्ही। इस प्रकार अब तक राकेश की जो कहानियां सामने आई हैं उनकी संख्या 63 है। राकेश के समय समय पर प्रकाशित कहानी संग्रहों का संक्षिप्त परिचयात्मक विवेचन यहाँ दिया जा रहा है, जिसके आधार पर उनकी कहानियों का स्पष्ट मानचित्र प्रस्तुत किए जाने की ही भावना है। पहले छपे पृथक पृथक कहानी संग्रहों का परिचय प्रस्तुत है। नोट 1, अश्क से भेंट वार्ता, दिनांक 29/5/76। 2, पहचान की भूमिका से, पृष्ठ 51, इंसान के खंडहर। यह सन 1950 में प्रकाशित राकेश की प्रथम कहानी संग्रह है। इसमें उनकी इंसान के खंडहर, धुंधला द्वीप, मरुस्थल, उर्मिल जीवन, एक आलोचना, लक्ष्यहीन सीमाएं, कंबल, दोराहा, वासना की छाया में और मिट्टी के रंग कहानियां संग्रहित हैं। प्रेमचंद की परंपरा का पाठक जब यशपाल तक आता है तो उसे एक तोष मिलता है, वह प्रेमचंद की परंपरा का आभास पाने लगता है, किंतु यशपाल में दृष्टिकोण के प्रति विशेष आग्रह झलकता है। राकेश की स्थिति इसके विपरीत है, वे दृष्टिकोण से मुक्त होने की कोशिश में लगे रहे हैं। उनमें अपनी पूरी वस्तु के साथ सहयोग के स्तर पर एकात्मकता और पात्र व परिस्थिति के प्रति हिस्सेदारी का बोध झलकता है, कारण वे परिस्थितियों और घटनाओं के तटस्थ पर्यवेक्षक नहीं थे। 1, इंसान के खंडहर की कहानियों में राकेश का ध्यान अभिजात वर्ग की कुलबुलाती आत्मा और मध्य वर्ग की घुटी हुई चेतना की ओर अधिक केंद्रित रहा। वह शोषितों, पीड़ितों और श्रमिकों के प्रति अधिक सदैव अधिक दयार्द्र दिखाई देता है। धर्म के नाम पर चल रहे आडंबर व पाखंड का पर्दाफाश करता हुआ व्यंगात्मक और आवेशी स्वर में बोलता है। वस्तुतः उसका प्रारंभिक स्वर प्रगतिशील चेतना के सरगम पर तैयार किया गया है। डॉक्टर धनंजय वर्मा ने ठीक ही लिखा है कि उसके पहले संग्रह इंसान के खंडहर को देखिए तो उसे सबसे पहले फिक्र है प्रगतिशील बनाम पराजयवादी मनोवृत्ति की। धर्माडंबर के प्रति व्यंग का जोश और धनिक वर्ग की लिप्सा के लिए उबलता हुआ आक्रोश, पेट में पहुंची आग का ताप और सतह पर तैरते हुए विचार की अस्त व्यस्तता श्रृंखला, चित्रणों में लिपटा हुआ वही ड्राइंग रूमी प्रेम और कॉफी के प्यालों पर बहसों का अंतहीन सिलसिला, भावुकता के विरोध में अतिरिक्त भावुकता और कमोबेश रूढ़िगत फार्म और ढहते घर की ईंटों पर गारे का लेप नहीं चलेगा वाली मुट्ठी बांध घोषणा, लेकिन इस सब के बावजूद यही वह देखता है कि सामने के जिंदगी की किताब खुली पड़ी है जिसके पन्ने अपने आप पलटते जा रहे हैं और उन पन्नों की इबारत आप बखूबी पढ़ सकते हैं। 1, असल में इस संग्रह की कहानियों में परिस्थिति के साथ तेजी से नया रूप लेते जीवन की धड़कनों को पूरी साफ गोई के साथ लिपिबद्ध किया गया है। यद्यपि राकेश ने बाद में यह स्वीकार किया कि इस संग्रह की कहानियां उनके बाद के प्रयोगों से मेल नहीं खाती हैं, कारण ये कि उनकी एक विशेष मानसिकता की उपज है। ये उस परिवेश को मूर्तित करती है जिसमें व्यक्ति अपने को उससे कटा हुआ अनुभव करता है। नोट एक, डॉक्टर धनंजय वर्मा, सारिका, मार्च 1973, पृष्ठ 82। पृष्ठ 52। सांस्कृतिक परिवार और आदर्श की वैसाखियों के सहारे चलने वाले समाज और परिवार के प्रति जो विद्रोह भाव उनके मन में था, जो कटुता थी, वह भी इस संग्रह की कहानियों में मिलती है। लेखक की मानसिकता समय के साथ साथ बदलती रहती है। जिस समय लेखक सृजन की प्रक्रिया से गुजरता है, उस समय उस रचना के साथ उसकी जो निकटता रहती है, वह समय बीतने के साथ साथ हल्की पड़ती जाती है। लेखक पर उसका प्रभाव बहुत समय तक नहीं रहता है। पहली रचना के प्रभाव से मुक्त होकर ही वह नई रचना के से आत्मीयता स्थापित कर सकता है। मोहन राकेश की कथा यात्रा के भी अनेक पड़ाव रहे हैं। राकेश के प्रथम प्रकाशित कहानी संग्रह इंसान के खंडहर की कहानियां उन्हीं के शब्दों में कई दृष्टियों से मेरे बात के प्रयोगों के साथ एक कड़ी के रूप में ठीक से नहीं जुड़ पाती। राकेश के प्रथम प्रकाशित कहानी संग्रह इंसान के खंडहर की कहानियां उन्हीं के शब्दों में कई दृष्टियों से मेरे बात के प्रयोगों के साथ एक कड़ी के रूप में ठीक से जुड़ नहीं पाती। उनके शिल्प और कथ्य दोनों में एक तरह की कोशिश है, एक अनिश्चित तलाश का कच्चापन। दो, लेखक और पाठकों का दृष्टिकोण एक नहीं हो सकता। इसका कारण स्पष्ट है कि लेखक की बदलती हुई मानसिकता के साथ पाठक का दृष्टिकोण बदलना आवश्यक नहीं है। लेखक की कथा यात्रा के हर पड़ाव पर कुछ पाठकों से उसका संबंध टूट जाता है और उसकी नई रचना के साथ कुछ और पाठकों का संबंध स्थापित हो जाता है। यही किसी लेखक की गतिशीलता को सिद्ध करता है। जीवन भर एक ही मानसिक भूमि पर रहकर लिखना राकेश की दृष्टि में केवल शब्दों का व्यवसाय है। पाठकों का एक वर्ग ऐसा भी है जो लेखक की पूरी रचना यात्रा में उसके साथ रहता है, बल्कि अनेक बार अपनी नई अपेक्षाएं सामने लाकर उसे प्रयोग की दिशा में अग्रसर होने के लिए भी प्रेरित करता है। नए बादल राकेश का सन 1957 में प्रकाशित दूसरा कहानी संग्रह है। इसमें कुल 13 कहानियों को स्थान प्राप्त है। नए बादल, मलबे का मालिक, अपरिचित, शिकार, एक पंखयुक्त ट्रेजेडी, उसकी रोटी, मंदी, हवा मुर्ग, उलझते धागे, सौदा, फटा हुआ जूता, भूख और छोटी सी चीज। इसमें सम्मिलित की गई कहानियों का रचना काल सन 50 से 54 तक, या कहें कि 55 तक फैला हुआ है। ये वर्ष काफी उथल पुथल के थे। एक ओर विभाजन और दूसरी ओर बेकारी की मार सहने वाले राकेश के जीवन में जो अनिश्चितता, संकटग्रस्तता और गहराइयों में ले जाकर छोड़ देने वाली निराशा व पीड़ा भर गई थी, उसका संकेत आलोच्य संग्रह की कहानियों से प्राप्त होता है। मलबे का मालिक और मंदी कहानियां प्रेमचंद की परंपरा में आती हैं। नोट एक, मोहन राकेश, मेरी प्रिय कहानियां, पृष्ठ 9-10। पृष्ठ 53। वे आदर्शवादी हैं, किंतु परिवर्तित परिस्थितियों के खाद पानी से तैयार आदर्शवाद ही उनमें है। नए बादल और उसकी रोटी जैसी कहानियों में जिंदगी का कटु यथार्थ अभिव्यक्त हुआ है। स्वयं राकेश की ये पंक्तियां इस संग्रह की वास्तविकता को व्यक्त करती हैं। इंसान के खंडहर से इस दौर तक आते आते ओढ़ी हुई बौद्धिकता के कोने काफी झड़ गए थे। जुमलेबाजी से इतनी चिढ़ हो गई थी कि अपने जुमलेबाज दोस्त से 12 साल पुरानी दोस्ती लगभग टूटने को हो गई थी। यद्यपि व्यक्तिगत जीवन भी बहुत से तनावों के बीच जिया जा रहा था, फिर भी अपने परिवेश से कटे होने की अनुभूति का स्थान सर्वथा एक दूसरी अनुभूति ने ले लिया था, और वह थी जुड़े होने की अनिवार्यता की अनुभूति। पर वह कड़वाहट निरर्थक और आरोपित नहीं थी। उसका उद्देश्य भी जुड़े होने की स्थिति से मुक्ति पाना नहीं, उसकी तात्कालिक शर्तों को अस्वीकार करते हुए जुड़े रहने के सार्थक संदर्भों को खोजना था। जिन स्थितियों को लेकर असंतोष था, उनकी विसंगतियों के प्रति मन में एक ह्यूमर का भाव भी था। नए बादल और जानवर की अधिकांश कहानियां इसी मानसिकता की उपज हैं। एक, वस्तुतः इस संग्रह की कहानियों में जीवन को यथावत रूप में चित्रित किया गया है तथा उसके सहारे अंतर्निहित यथार्थ को संकेतिक किया गया है। इस संग्रह की कहानियों के संबंध में डॉक्टर धनंजय वर्मा का यह मत लेखकीय है, इस संग्रह के माध्यम से सहज अनुभूति के साथ कई स्थितिशील और गतिशील व्यक्तिगत और सामाजिक स्तरों पर यथार्थ की खोज, उसके सामाजिक और भौतिक परिपार्श्व और अंततः एक व्यक्ति के चरित्र के माध्यम से पूरे समाज और युग की कथा व्यथा कहना आलोच्य कहानियों की दिशा है। दो, मलबे का मालिक, उसकी रोटी, मंदी, हवा मुर्ग, मरुस्थल और भूखे संग्रह की प्रसिद्धि और यथार्थ चेतना वलियत कहानियां हैं। सामाजिक संदर्भों में लिखी गई ये कहानियां जीवन की तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करती हैं।